तो दोस्तों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं घर खरीदने के बारे में या अपना घर बनवाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा, ब्लॉक वगैरह खरीदने के बारे में। और चर्चा की हमने आर्किटेक्ट श्री ललित मित्तल के साथ, जिन्होंने पिछली बार हमें बेसिक मूल जानकारी दी कि लोकेशन कितना अहम है, पहले तो बजट के बारे में सोचना चाहिए, फिर किस सबब में आपको घर लेना चाहिए या जमीन लेनी चाहिए, लोकेशन के बारे में भी उन्होंने बहुत ही जोर दिया है। अब आइए कुछ और सवाल पूछते हैं घर खरीदने के बारे में ललित जी से। नमस्ते ललित जी।
नमस्ते कुमुद जी।
पिछली बार आपने अच्छी बेसिक मूल जानकारी दी घर खरीदने के बारे में जो सोच रहे हैं उनको, अब बताइए कि और क्या हमें सोचना चाहिए। हाउस इंस्पेक्शन वगैरह भी काफी इम्पोर्टेंट होता है ना?
जी कुमुद जी, मेरा मानना ये है कि जैसे हर एक चीज खरीदने से पहले उसका वेरिफिकेशन जरूरी है, तो खास करके प्रॉपर्टी विच इज कॉस्टिंग यू योर ऑल द एंटायर लाइफ सेविंग, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इंस्पेक्शन करवाएं। और उसमें एक तो बिल्डिंग इंस्पेक्शन हो गया और एक पेस्ट इंस्पेक्शन जो कि विल कवर टर्माइट्स एंड ऑल, और खास करके जो कुछ हाउसेज विच आर बिल्ड बिफोर 1980s दे मे इवन हैव एस्बेस्टस। सो ये इंस्पेक्शन कराने से इसका फायदा ये होता है कि आपको डिफेक्ट्स पता चल जाते हैं, फिर उसमें जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो पता चल जाती है, और फिर हो सकता है कि यू कैन इवन नेगोशिएट विद द वेंडर ऑन द कॉस्ट ऑल्सो, सेइंग दैट लुक दीज आर द थिंग्स विच आई विल नीड टू फिक्स। एंड खास करके अगर ऐसी कोई बहुत ज्यादा सीरियस उसमें डिफेक्ट है which can take lot of money, तो inspection करने से ये सब चीजें पता चल जाती हैं, जो कि otherwise for average person who is doing the house inspection just as a open house they will never discover, and sometimes these place defects are easily disguised also because if there is some dampness or something they'll just paint or put some furniture so that you will never discover otherwise.
और बैंक की सलाह वगैरह कुछ?
हाँ, बैंक की सलाह के लिए आजकल कई प्रॉपर्टीज के लिए बैंक जो है वो वैल्यूएशन भी मांगते हैं प्रॉपर्टी का, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू अ बैंक एंड अप्लाइंग फॉर अ लोन एंड दे वांट टू मेक श्योर दैट इट्स मार्केट वैल्यू इज करेक्ट, सो दे विल आस्क यू टू गेट वैल्यूएशन डन फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर।
अच्छा, तो वैल्यूएशन करवा ली, पेस्ट के लिए आपने हाउस इंस्पेक्शन करवा लिया, इसके अलावा कुछ और?
उसके अलावा हाँ, प्रॉपर्टीज में कई बार कुछ लेटेंट कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि सीवर लाइन जो है आपकी प्रॉपर्टी में पीछे कोई सीवर लाइन तो नहीं जा रही है, या कुछ ड्रेनेज इजमेंट तो नहीं है, क्योंकि these things can affect आपका जो फ्यूचर में अगर आप
वैल्यू
ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो, और अगर आप जैसे एक्सटेंशन कर रहे हैं और अगर सिविल लाइन बीचों बीच जा रही है या कोई ईजमेंट है ड्रेनेज वगैरह की सिविल लाइन की, तो उसमें भी आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको सेटबैक्स वगैरह ज्यादा चाहिए होते हैं।
और कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी कुछ?
जी, आजकल अगर आपके पास आपके आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसमें अगर स्विमिंग पूल है, तो अब 29 अप्रैल से 2016 से कुछ नए रूल्स न्यू साउथ वेल्स में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके तहत आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना स्विमिंग पूल।
अच्छा, 29 अप्रैल से ये नए रूल्स शुरू हो गए हैं?
जी हाँ,
तो रजिस्टर करवाना है
स्विमिंग। जी हाँ, इसमें एक न्यू साउथ वेल्स का अगर आप ऑनलाइन भी देखें तो एक न्यू साउथ वेल्स ने एक रजिस्टर इस्टेब्लिश किया है स्विमिंग पूल रजिस्टर करने के लिए। तो वो आप रजिस्टर करें और फिर काउंसिल के, या तो काउंसिल वाले इंस्पेक्ट करेंगे या फिर उनके जो सर्टिफाइड सर्टिफायर्स हैं वो इंस्पेक्ट करके एक सर्टिफिकेट देंगे, जो कि आपको जो नया कॉन्ट्रैक्ट है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उसमें अटैच करना है।
और शायद काउंसिल के साथ ये भी हमें चेक करना चाहिए कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी पर कोई इल्लीगल गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन तो
जी,
नहीं?
जी, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नया घर खरीदने जाते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ एडिशंस ऑल्ट्रेशंस कर देते हैं जो कि काउंसिल से अप्रूव नहीं होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड इलीगल। तो बाद में फिर चल के आपको जब कभी प्रॉपर्टी अगर सेल करनी है या एक्सटेंशन करना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो काउंसिल से ये चेक करना जरूरी है कि ये सब लीगली
किया हुआ है
कि नहीं।
अच्छा
जी, उसके अलावा आपको ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं हेरिटेज और कंजर्वेशन एरिया में नहीं है या फिर बुश फायर प्रोन एरिया में नहीं है, और अगर है तो क्या लेवल है उसका, या फिर प्रॉपर्टी में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। और कई बार अगर प्रॉपर्टी लो लाइंग फ्लड एरिया में होती है तो उसमें भी एक्सटेंशन के टाइम काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
अच्छा, तो ये तो हो गया भाई लो लाइंग फ्लड एरिया वगैरह के बारे में। ये बताइए कि अगर हम जमीन का टुकड़ा एक ब्लॉक लेना चाह रहे हैं अपना घर बनाने के लिए तो किन बातों का ध्यान रखें?
उसके लिए कुमार जी, जो भी अभी बातें घर के लिए हमने डिस्कस की वो सब तो अप्लाई करते ही है, बट उसके अलावा और कुछ खास चीजें हैं जैसे कि वंस अगेन आई विल रिपीट कि मतलब लैंड जो है वो बहुत स्टीप स्लोप पे ना होए। उसके दो कारण है, या तो एक तो वो बहुत एक्सेसिबिलिटी उसकी कम हो जाती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है।
अच्छा।
और उसके अलावा आपको अवॉइड करना चाहिए जैसे अगर लैंड है वो बहुत नैरो है, स्ट्रीट फ्रंटेज नैरो है, तो उसमें भी अगर खास करके अगर आप किसी प्रोजेक्ट होम्स वगैरह के पास जा रहे हैं तो उनके पास डिजाइन कंस्ट्रेंट काफी होते हैं। अगर इरेगुलर या यू नो अनयूजुअल साइज ऑफ लैंड हो और नैरो लैंड हो तो उस पे फिर उनके लिए डिजाइंस नहीं होते हैं
जी।
और उसके अलावा अगर रॉक्स वगैरह हो बहुत ज्यादा तो भी उनको कट करने में और एक्सकेवेट करने में इट कैन बी एक्सपेंसिव, दैट शुड बी अवॉइडेड। उसके अलावा जैसे अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके ब्लॉक में कोई पीछे ड्रेनेज ईस्टमेंट वगैरह है या सिवर लाइन है तो उससे भी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होती है और आपको एक्सटेंशन करने में भी बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा फाइनली जैसे अगर कोई ओवरहेड ग्रिड लाइन है या पावर लाइन है घर के पास से गुजर रही है तो उसमें भी आपको कुछ यू नो कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी यू नो इफेक्ट होती है।
जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है ललित जी, और लोगों को ये बता दें कि भाई ये आम जनरल टाइप की जानकारी है। जब आप घर वगैरह बनवाएं तो जरूर आपका जो बिल्डर है, आर्किटेक्ट है और लोकल स्थानीय काउंसिल है उससे सलाह जरूर करें, लेकिन ये आपकी आम जानकारी के लिए है।
जी, ये बहुत जरूरी है।
जी, बहुत शुक्रिया ललित जी।
थैंक यू।